अंतिम संदेश। सर्व सेंटर के सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण, भाइयों और बहनों, हम मधुबन निवासियों की हार्दिक याद प्यार स्वीकारम। आपको माँ का समाचार तो मालूम हो ही गया होगा कि मीठी माँ स्थूल वतन छोड़ सूक्ष्म वतनवासी बन गई। आह्वान तो हम बच्चों ने ब्रह्मा बाप के संग बहुत बहुत किया, लेकिन ऑलमाइटी बाबा ने अर्जी मंजूर नहीं की। मीठा ड्रामा ही कहे, मुरली समाप्त कर। दोपहर 2 बजे माँ को मधुबन धरती से विदाई देने का प्रोग्राम था। ऑलमाइटी बाबा ने डायरेक्शन दिया था कि माँ के लिए बहुत सजा हुआ चौडोल बनाना है। उसी डायरेक्शन प्रमाण रंग बिरंगी फूलों से, सफेद चादरों से चौडोल को सजाया गया था। पूरे 1:30 बजे माँ के पार्थिव शरीर को फूलों से और चंदन के तिलक आदि से सजाकर तैयार किया गया था। फिर लास्ट टाइम आधा घंटा बाप दादा और हम सब बच्चे अंतिम नयन मुलाकात हेतु हॉल में योग में बैठे और अंत तक यही आह्वान किया कि अब भी बाबा क्या। बाबा हमारी माँ को वापस भेजते। कौन आह्वान कर रहा है ये?
सभी बच्चे।
कौन से बच्चे? जो आत्मा के संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं, जो शरीर क्या है और आत्मा क्या है और आत्मा की क्या गति है वो जानते हैं, जो जानते हैं कि आत्मा एक बार शरीर से बाहर गई तो आ नहीं सकते वापस, तो क्यों भी फिर भी क्यों कर रहे हैं ऐसे संकल्प? क्या ये कमजोरी की निशानी है कि विस्मृति की निशानी है? ज्ञान तो सबको पता है, आत्मा और परमात्मा और आत्मा की गति, आत्मा का स्वरूप, आत्मा कैसे शरीरों में घूमती है, अटैचमेंट की, प्रेम की, आसक्ति की, प्रीति, भगवान की परीक्षा। बाबा ने तो सब मूल्यों में सब कुछ कह दिया है, फिर भी इस तरह के संकल्प उठ रहे। आखिर 3 बजे माँ के शरीर की चौड़ोल पर पदारम्भनी दी गई और तस्वीरें आदि खींची गई। सब गोप गोपी गोपियां लाइन में खड़े थे और चौड़ोल आगे आगे बढ़ता गया। साकार बाबा भी मधुबन के फाटक तक कंधा देने आए। मधुबन गेट के बाहर निकलने के बाद अपने यूनिफॉर्म पहने हम सब बच्चों ने बहुत साइलेंस में तीन तीन की लाइन बनाई। पहले भाई, पीछे बहने जा रही थी। बस यह सीन तो ऐसी लग रही थी जैसे कोई फरिश्तों का जुलूस जा रहा है। बच्चे नंबरवार कंधा देते अग्नि संस्कार स्थल की ओर बढ़ते गए। रास्ते में सब लोग यह विचित्र और अलौकिक नजारा बड़े आश्चर्य से देख रहे थे और कह रहे थे कि यह क्या आश्चर्य है जो इतने लोग और फिर भी इतनी शांति। आखिर तो रास्ता तय करके उस स्थान तक पहुंच गए जहां अंतिम क्रिया करनी थी। वहां भी सब योग में बैठे रहे और दूसरी तरफ प्रबंध होता रहा। उस अंतिम समय में मुंबई के ब्रह्मावत्स हवाई जहाज और रेल द्वारा यात्रा कर सीधे वहीं पहुंचे। माँ के मृतक शरीर को देख सभी बड़े गंभीर रूप में भावी को देखते रहे। साथ में बहुत फूल और चंदन आदि लाए थे। आखिर वह भी समय आ पहुंचा जो माँ के चौड़ोल पर लकड़ियां रखी गई। बस उस समय ऐसा सन्नाटा छा गया जो सुई भी गिरे तो भी आवाज आए। अब तो सबको निश्चय हो गया, अभी निश्चय हो रहा है। क्या निश्चय हो गया? अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी तक हो सकता था पर अभी। अब तो सबको निश्चय हो गया कि अब मां स्थूल वतन से विदाई ले रही है। फिर तो विश्व किशोर भाई ने बहुत दिल को थमाते हुए मुखाग्नि दी। बस अग्नि ने सब कुछ पांच तत्वों को अर्पित कर दिया। फिर सब शांति में लाइन में ही मधुबन लौट आए। साकार वतनवासी मीठी मम्मा की स्थूल वतनवासी बनने के बाद अव्यक्त वतन में रूरियान संदेशी गुलजार दादी द्वारा मधुबन में 7 दिन का भोग का समाचार। पहला दिन 26 जून 1965। पहला संदेश। नुमा शाम का समय था, हम वतन में पहुंची तो मीठी मम्मा क्या कर रही थी? मीठी मम्मा बड़े आराम से बाबा की गोद में विश्रामी थी। हम जा पहुंची, बाबा ने मम्मा को अपने हाथों से भोग स्वीकार कराया और कहा कि मम्मा बड़ी थक कर आई है, इसलिए विश्राम कर रही है। हमने कहा, मम्मा, सबने कहा है मम्मा को ले आना, तो आप चलिए, सब बहुत याद कर रहे हैं। माँ बहुत मीठा मुस्कुराते हुए बोली, बच्चे आप सब तो बहुत बार वतन में घूमते रहते हो, मैं आज यहाँ आई हूं तो लेने आई हो? आज पूछा है बाबा ने, सूक्ष्म वतन में रहना अच्छा लगता है या देखना अच्छा लगता है? किसी ने कहा ना, शिव शक्ति है। अभय वरदानी। तो क्या कहा माने, मैं आज यहाँ आई हूँ तो लेने आई हूँ, सूक्ष्म वतन मुझे बहुत भाता है। आज बाबा ने पूछा है, सूक्ष्म वतन में रहना है या केवल देख के रहना है? किसी ने कहा ट्रायल करेंगे, मिक्स करने के संस्कार हुए, सभी चीजों में मिक्स करते हो, तो जब मन बुद्धि मनमत से मुक्त होगी तो वतन की सीन और सीनरी ऐसे दिखाई देगी जैसे कि यहाँ की कोई सीन स्पष्ट दिखाई देती है। जब मन और बुद्धि मनमत से मुक्त होगी, मिक्स करने की आदत पड़ गई है बाबा ने कहा। द्वापर से भी मिक्स किया तुमने, पूजा में मिक्स कर दिया। क्या मिक्स कर दिया पूजा में? देवताओं की शक्ल को बंदर की शक्ल लगा दी। पवित्र गृहस्थी में अपवित्रता मिक्स कर दी। मनमत में श्रीमत मिक्स कर दी। शास्त्रों में बाप की कहानी की जगह बच्चे की कहानी डाल दी। मिक्स किया है, मिलावट किया है। रियल गोल्ड उसमें मिक्स किया जाता है तो भारी हो जाता है, वैसे मनमत में अगर कुछ मिक्स होता है तो भारी हो जाता है। तो जब मनमत से मन बुद्धि मुक्त रहेगी तब वहां की सीन ऐसे दिखाई देगी जैसे यहाँ की कोई सीन स्पष्ट अनुभव करते हो। यहाँ कह रहे मम्मा कि मुझे सूक्ष्म वतन बहुत भाता है। सब बच्चों की हमारी तरफ से बहुत याद प्यार देना। पहला संदेश पूरा। दूसरा दिन 27 जून। नियम प्रमाण भोग स्वीकार कराने के बाद आज मीठी माँ को ऑलमाइटी बाबा के साथ गद्दी पर विराजमान देखा। दोनों आपस में बातें करने में इतने मगन थे जो कुछ सेकंड तक हमें भी देखा ही नहीं। फिर बाबा ने कहा, मम्मा आपके प्रति यज्ञ प्रसादी आई है, आज तो आप भोजन ही भूल गई ना? फिर माँ सुना रही थी कि बाबा आज मुझे कह रहे थे कि मम्मा आज आपको सेवा अर्थ भेजू। मैंने कहा, बाबा अभी तो मैं वतन में ही रहूंगी, जैसे साकार बाबा के साथ रही हूँ वैसे आकारी वतन में आपके साथ रहूंगी। फिर मम्मा को सब अनन्य बच्चों की याद दी। बस याद देते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे कि माँ के नैनो रूपी दूरबीन में एक एक वत्स की प्रेम संपन्न याद की मूर्त बस रही थी और एक एक से मुलाकात हो रही थी। उस समय माँ के नैन बच्चों के स्नेह में गीले हो रहे थे। माँ को कहा, मम्मा सबसे मिलने के लिए चलेंगी? माँ बोली, जैसे बाबा चलाएंगे वैसे चलूंगी। क्या कहा? जैसे बाबा चलाएंगे वैसे चलूंगी। बच्चों का वायदा है, जहाँ बिठाएंगे वहाँ बैठेंगे, जो खिलाएंगे वो खाएंगे, जैसे चलाओगे वैसे चलेंगे। इसी का भक्ति में क्या गायन है आज की मुरली से? पत्ते पत्ते को कौन हिलाता है? भगवान हर पत्ते को हिलाता है। अगर चींटी के पैरों में पायल हो तो उसकी भी आवाज उसको सुनाई देती है। तो भगवान को हर चीज का पता है, हर चीज वो सुनता है। इस सृष्टि में जो कुछ हो रहा है सब कुछ वो कर रहा है। परंतु बाबा ने कहा, वो पत्ते तो स्वतः ही ड्रामा अनुसार हिलते हैं। वो पत्ते तुम हो। कौन से पत्ते? चैतन्य पत्ते। कौन से पत्ते? कल्प वृक्ष के पहले पहले पत्ते। कौन से पत्ते? गोल्डन एज के गोल्डन एजेड पत्ते, संगम युग के गोल्डन एजेड पत्ते। गोल्डन एजेड पत्ते, चैतन्य पत्ते, पहले पहले पत्ते तुम हो। तुम्हारा मन श्रीमत के आधार पर, तुम्हारे मन को चलाने वाला बाप है। तो भगवान चला रहा है इन पत्तों को, ये तुम पत्तों का गायन है। तो ये मम्मा उसका स्वरूप है। क्या कह रही है? सबसे मिलने चलेगी मम्मा? पूछा। मम्मा बोली, जैसे बाबा चलाएगी वैसे चलूंगी। आज बाबा ने यह भी कहा है, मन को चलाने की आदत हो गई है। खुद बाबा चलाता है श्रीमद से, पर मन स्वतः ही चलता है। उसको जैसे चलने की आदत पड़ गई है। उदाहरण दिया एक बहुत सुंदर मेडिकल का, जब कोई पागल जैसा करता है, तंग होता है, उछलता है, अनियंत्रित कंट्रोल में नहीं रहता है, तो उसे क्या किया जाता है? इंजेक्शन लगाया जाता है। कौन सा? कहाँ मिलता है? कहाँ पे? कहाँ मिलता है ये इंजेक्शन? इमरजेंसी सिचुएशन से, पागल तंग हो रहा है, उछल रहा है और कंट्रोल में नहीं है, चारों बातें हो रही है पेशेंट को, वहां पे हमारे पास इमरजेंसी कार्ट होता है एक, वहां से एड्रेनालिन और एट्रोपिन इंजेक्शन दिया कि वो सुबह सुबह सिस्टर बना के रख देती है। सिस्टर आई नहीं है, सुबह बना के रख देती है। हाँ, डेली वेस्ट हुआ तो चलेगा, क्योंकि वो इंजेक्शन इतना महत्वपूर्ण है कि कभी भी कोई पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में आ गया तो वो तुरंत देना पड़ता है, एट्रोपिन एड्रेनालिन, एड्रेनालिन ज्यादा। तो इमरजेंसी ट्रॉली होती है, इमरजेंसी कार्ट होता है, इंजेक्शन लिया पहले ही लोड किया होता है, क्योंकि कभी भी कुछ भी आ सकता है, तुरंत लगा दिया। तो यहां पर भी क्या है, मन उछलता है, मन पागल होता है, मन अनियंत्रित होता है, श्रीमत को छोड़कर मनमत लाता है, परमत लाता है, भारी हो जाता है। तो यहाँ पर अश्रुति का इंजेक्शन लगा दो बाबा ने कहा। कहाँ मिलता है ये? कोई दूसरा लगा दे तो अच्छा है। पेशेंट खुद को तो खुद इंजेक्शन नहीं लगा सकता, कोई डॉक्टर चाहिए।
डायबिटीज रोगी सब लगाता है ना अपने?
हाँ, वो इमरजेंसी नहीं है इतना, वो रोज का है। ये इमरजेंसी सिचुएशन जिसमें पेशेंट बेहोश है, अनियंत्रित पागल जैसा है। मन की तुलना विवेकानंद ने की है किसके साथ? बंदर के साथ। बंदर पहले ही चंचल है, मन कैसा है? उस बंदर की तरह है जो चंचल है। अभी ये बंदर पागल हो गया है, फिर पागल हुआ, फिर किसी ने उसको दारू पिला दी और फिर एक भूत उसमें प्रवेश कर गया। ये जो स्थिति है ये मन की स्थिति है। ये जो हुआ है ना, बंदर जो पागल और फिर दारू और फिर किसी आत्मा ने प्रवेश कर लिया, कैसे उछलेगा वो पागलों की तरह? अब यही स्थिति है। अब है मन मना भव, बाबा ने कहा है ये मन को अब मुझ में लगाओ। ये है सहज मंत्र, बाप को ज्यादा मेहनत का काम तो बिल्कुल देते नहीं। ऐसी जो स्थिति है यही हमारा मन है, इसको लगाना है अब बाप में। तो ये अशरीरीपन का इंजेक्शन और कितना डोज में लगाना है आशीष भाई? कितना इंजेक्शन लगाओगे? कितना 5 cc, 10 cc, कितना मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट? बॉडी वेट के हिसाब से इंजेक्शन लगते हैं। 50 किलो का आदमी है, 60 किलो का है तो इंजेक्शन का डोज बदलता है, 5 मिलीग्राम पर केजी। 50 किलो है तो डोज चेंज, बच्चा है तो डोज चेंज, अशरीरी इंजेक्शन का इंजेक्शन अशरीरी डोज क्या है? हाँ पर के जी क्या? हाँ उसका पैमाना क्या है, उसका फैसला कौन करेगा? ज्यादा उछल रहा है कम उछल रहा है? और स्वयं हम कैसे निर्णय करें कि हमारा मन आज ज्यादा उछल रहा है, कल फिर इतना डोज उतना डोज? ये इंजेक्शन दूसरा नहीं लगाने वाला है, खुद ही लगाओ। बाबा ने कहा इंजेक्शन लगा दो, बहुत ही छोटा काम है, सहज काम दे दिया इसका। इंजेक्शन जैसे रखा हुआ है, जैसे सिस्टर सुबह सुबह लोड करके रखती है, वैसे अमृत वेला इस इंजेक्शन को लोड करके रखना पड़ेगा, ताकि सारे दिन भर, और रखना भी ऐसी जगह जो तुरंत मिल जाए, नहीं तो ढूंढते रह जाएंगे। फुल डोज लोड करके रखना। कल हम चर्चा कर रहे थे इसका डोज कितना है, वो होता है बॉडी वेट के हिसाब से, ये है सिन और सिन के हिसाब से। सिन और सिन, एक सिन अर्थात पाप, दूसरा सिन अर्थात दृश्य परिस्थिति है। सिन कितना है, पाप कितना है, ज्यादा पाप तो ज्यादा डोज, कम पाप तो कम डोज। सिन 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 सिन, परिस्थितियां बहुत ही विकराल है तो थोड़ा ज्यादा डोज लगेगा, छोटी मोटी परिस्थिति तो कम डोज। अशरीरीपन का इंजेक्शन, इतना छोटा सा काम, एक तो ये काम दिया है, दूसरा बस बाप के पास आके बैठ जाओ। बैठना भी नहीं आता है क्या, पूछा है आज बाबा ने, तख्त पर बैठ जाओ, इतना भी नहीं आता है। इतना छोटे काम शायद ही किसी गुरु ने किसी शिष्य को आज तक दिए है। सर्वेंट के सर्वेंट नहीं बनो, दासानुदास नहीं बनो, तुम ईश्वरीय सर्वेंट हो, तुम खुदाई खिदमतगार हो। संगम युगी साहेब और बीवी, गुलाम नहीं बन जाओ। साहेब बीवी और गुलाम मूवी बनी थी 1962 में, कोई बाबा ने बोली आज तो, जैसे बाबा चलाएंगे वैसे चलूंगी। संकल्प भी बाबा चलाए, आज बोला है वो चलाए, तुम क्यों चला रहे हो? इतना समर्पण भाव। बाकी बाबा मुझे बहुत बहलाते हैं, वो कल सुनाऊंगी। तीसरा दिन 28 तारीख 28 जून सर, आज भी माँ को बाबा के साथ बगीचे में देखा। पहले दिन कहाँ देखा, गोद में विश्राम, दूसरे दिन इधर गद्दी पर, अभी तीसरा बगीचे में। बगीचे में सब कुछ है, बाबा ने आज भी कहा। वहां कैमरा की बात कही ना, ऑटोमेटिक वतन में ऑटोमेटिक कैमरा है, उस कैमरा से जैसे इस कैमरा से क्या दुनिया वालों ने उस कैमरा की कॉपी इधर की है, तो वहां पर जो देखना चाहो हाजिर है, जो भी हर चीज वहां हाजिर है, हर चीज है, बगीचा, गद्दी, कैमरा, टीवी, सब जो शुभी रस, कंप्यूटर, फल फूल सब कुछ है। तो बाबा कह रहे हैं बगीचे में देखा, और साथ में संपूर्ण मम्मा को भी देखा, माँ को बाबा के साथ देखा, और तीसरा भी एक व्यक्ति था, कौन सा? संपूर्ण मम्मा, तीन लोग देखे। दूर से ऐसे लग रहा था जैसे मेरी आंखें एक माँ के दो रूप तो नहीं देख रही है, लेकिन नजदीक जाने के से मालूम हुआ कि संपूर्ण मम्मा और साकार मम्मा दोनों थी। फीचर्स तो एक ही थे, ट्रांसपेरेंट दोनों थी, लेकिन दोनों की फिर भी पहचान हो सकती थी। मुलाकात होने के बाद संपूर्ण मम्मा देखने में नहीं आई। बाबा बोले, मम्मा से पूछो कि आज कहाँ कहाँ सैर किया, वहां से कहीं पर भी सैर की जा सकती है, कहीं पर भी वतन से। मम्मा बोली, आज बाबा मुझे सब सेंटर की सैर पर ले गए थे, वहां देखा कि कई बच्चों को शिव बाबा की याद भले थी, लेकिन माँ की याद ज्यादा थी, माँ की याद का पलड़ा भारी था। कईयों के चेहरे बहुत सन्नाटे में और गंभीर भी देखने में आए, कईयों के चेहरे, कोई कोई के तो मुरझाए हुए चेहरे भी थे, कोई हर्षित मुख भी थे जो देख देख मुस्कुरा रहे थे। सारा चक्कर लगाने के बाद बाबा मधुबन में ले आए। अपनी संदली पर बैठ जैसे मैं मुरली सुनती थी वैसे सुनी। बच्चों का और मेरा ध्यान मुरली में ही था। फिर माँ ने सुनाया कि आज 6 बजे से इंतजार कर रहे थे। बाबा हमें वतन के फल दिखा रहे थे और कह रहे थे कि जो अच्छा लगे वो तोड़कर खाओ। हमने मम्मा से पूछा, मम्मा आप जब साकारी वतन में जा रही थी तो सबसे विदाई भी नहीं ली, क्या आपको मालूम था कि मैं जा रही हूं? माँ बोली, कल यह सुनाऊंगा। 7 दिन माँ को मधुबन में आने का निमंत्रण दिया। आज मम्मा को कुछ स्थूल वतन की स्मृति अधिक थी और वह बहुत रिफ्रेश थी। बाबा ने कहा कि आज मम्मा को भक्तों के पास ले जाना है। तो यह था 3रा दिन। 4था दिन 29 तारीख, 26, 27, 28, अभी 29। मम्मा तो बाबा के साथ ही थी। भोग स्वीकारने के बाद मम्मा से पूछा कि कल कहां कहां बाबा ने सैर कराई। माँ बोली, बाबा ने कहा आधे भक्त मेरे और आधे भक्त तेरे और आधे भक्त मेरे हैं। अब बताओ आपके भक्तों के पास ले चलूं या अपने भक्तों के पास। फिर तो बाबा ने बहुत सैर कराई, लेकिन एक काली का मंदिर था वहां बाबा ले गए। कहां ले गए? काली के मंदिर में। वहां देखा तो बहुत भीड़ थी काली के मंदिर में। भक्त अपने नियम प्रमाण जा रहे थे। एक भक्त बहुत व्याकुल था और प्रतिज्ञा कर रहा था। कौन था वो भक्त 65 में? क्या प्रतिज्ञा कर रहा था एक भक्त? अगर दर्शन नहीं होंगे तो प्राण त्याग कर दूंगा, ऐसा एक भक्त था। कलकत्ता में होगा कहीं। बाबा बोले, मम्मा भक्तों की पुकार सुनते रहम नहीं आता, अब इसके सामने जाओ, इस भक्त के सामने। तो मैं जाकर मूर्ति के आगे खड़ी हो गई, मूर्ति के आगे काली के। भक्त इस साधारण रूप को देख बेचारा हर्षित भी हो रहा था तो दुविधा में भी पड़ गया। भक्त के सामने श्वेत वस्त्रधारी महिला आ गई। बाबा ने कहा, उसके मस्तक पर हाथ धरो। तो मैं जाए उसके आगे ठहरी, मस्तक पर हाथ रखा, वह ध्यान में चला गया। कितना अच्छा योग का प्रयोग है ये। वह ध्यान में चला गया और देखा कि कैसे वही काली अंबा के रूप में आगे खड़ी है। बस चेतन रूप में प्राप्ति देख भक्त तो गदगद हो गया। तो भक्तों की आवाज सुनना, भक्तों की पुकार सुनना, उनको इमर्ज करना, उनको देखना, ये सब हमारे अभ्यास है। भक्तों के सामने जाना और उन्हें साक्षात्कार कराना। पर कभी कभी भक्त हमसे अधिक पावरफुल है, हमारी स्थिति से उनकी स्थिति अधिक पावरफुल है। होता है कि नहीं? जो इष्ट देव है वो सोए पड़े हैं और भक्त जाग रहे हैं, रात रात भर जाग रहे और पुकार रहे, और इष्ट देव अलबेले उनको अपने दुख दर्द में डूबे हुए, पता ही नहीं, उनको आवाज ही नहीं सुनाई दे रही है। ऐसा ना हो जाए कि भक्त ही हमारे स्वप्न में आ जाए और कहे कि हे इष्ट देव बोलो क्या दू। उल्टा ना हो जाए, बोलो वरदान मांगो, क्या चाहिए? अलबेलेपन से मुक्ति, मुक्ति चाहिए, क्या चाहिए? ताकि आप हमारी आवाज तो सुनो कम से कम, भक्त ना आ जाए हमें वरदान देने, उल्टा ना हो जाए कुमुदे। बस चेतन रूप में प्राप्ति देख भक्त तो गदगद हो गया। आज भी विश्व भर में सर्व आत्माएं योग करने वाली है। योग कौन सा योग? शिव बाबा वाला योग या रामदेव बाबा वाला योग? योग को लोग क्या समझते हैं? योगासन। योग कहा तो कितने लोग जमा हो रहे हैं राजपथ पर दिल्ली में? 5,000 से ज्यादा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जाने वाला है। कितना? 35,000। अच्छा, तो इतने लोग वहाँ जमा होने वाले, एक साथ योगासन करने वाले, और दादी भी है वहाँ पर, जानकी दादी, और लाल किला में हो गया कल। अच्छी भी मेन प्रोग्राम तो आज है, तो दादी ने कल परसों वहाँ पे ब्लड टेस्ट जो कराया, दादी ने जो ब्लड टेस्ट कराया वो रिपोर्ट सब इतने परफेक्ट है, इतने परफेक्ट है कि कोई 30 साल का आदमी अगर अपने ब्लड टेस्ट कराए तो वो उतने नहीं आएंगे। एक एक चीज इतनी परफेक्ट आई है सारी रिपोर्ट्स में। ईसीजी से लेके तो सीबीसी से, हीमोग्लोबिन से लेके तो एलएफटी, वो लीवर किडनी से लेके एक एक चीज जो 30 साल के आदमी की भी नहीं आएगी, इतना परफेक्ट रिपोर्ट है। 99 अभी 100 वो उम्र में ऐसी रिपोर्ट, ये भी एक रिकॉर्ड ही है। उनको दिखाना चाहिए रामदेव बाबा जी को, ये देखो रिकॉर्ड रिपोर्ट। बिना योगासन की ये है। तो इसको यहीं पूरा करें कि पढ़ ले थोड़ा सा, थोड़ा है। कब कितने बजे? 6:30 हो जाने। फिर बाबा ने विदेशी युगल दिखाया जो अति नवदा भक्त थे, एक विदेशी युगल भी थे जो नवदा भक्त थे, बहुत घायल रूप से अंग्रेजी में प्रार्थना कर रहे थे। माँ को पुकार रहे थे और माँ माँ कहे बहुत मिलने की अभिलाषा प्रकट कर रहे थे विदेशी भक्त। बाबा ने सुनाया कि भले ही अब ये क्रिश्चियन है लेकिन है भारतवासी पक्के भक्त। तो केवल भारत के भक्तों को नहीं, हमें विश्वभर के भक्तों को की पुकार सुननी है, और उनकी पुकार कोई हिसाब के कारण वहां जन्म मिला है। कल जो पूछा था, अभी कल कौन सा प्रश्न था? मुख्य प्रश्न था कल, क्या आपको पता था कि आप जाने वाली हो? कल पूछा था ना, मम्मा ने कहा ना कल बताऊंगी, क्या आपको मालूम है मैं जा रही हूँ? मम्मा बोली कल यह सुनाऊंगी। अभी कल जो प्रश्न पूछा था कि अंतिम समय आपको महसूस था थी या नहीं, उस पर मम्मा ने सारा समाचार सुनाया कि 4 दिन पहले ऑलमाइटी बाबा से मुलाकात हुई थी, उस लास्ट मिलन में बाबा की बातों से मुझे 100% निश्चय बैठा था कि अब मुझे जाना है, लेकिन 1% ना का था, क्योंकि पहले जब बाबा हमसे मिलता था तो कहता था कि अभी तुमको बहुत सेवा करनी है, अब जाने की बात ही नहीं। सोचो, तुम्हारा तो बहुत बड़ा पार्ट है आदि आदि, लेकिन इस बारी जब हमने पूछा कि बाबा कब तक और कितना समय यह हिसाब किताब है, तो बाबा बोले बाकी थोड़े समय का ही है, अब जल्दी ही अंत होना है। और आदि से बाबा उस दिन गंभीरता से मुस्कुरा रहा था, जो लगता था कि कोई गुही रहस्य छिपा हुआ है। साथ में फिर बीच बीच में यही कहता था कि बेटी सूक्ष्म वतन में चलेगी, वहां चल खेलेंगी, बहलेगी। इन सब चरित्रों से पक्का मालूम हो रहा था कि बाबा अपने पास मुझे खींच रहा है। जो भी महान आत्माएं होती है उनको पहले ही पता चल जाता है कि हम जाने वाले सृष्टि में, इस सृष्टि चक्र में, इतिहास चक्र में ऐसी सभी आत्माएं हैं कि जिनको पहले ही पता चल गया कि हम अभी जाने वाले हैं। जैसे उनको पता नहीं कहां से वो कोई टचिंग आ जाती है। यज्ञ में भी, यज्ञ को छोड़ के बाहर की जो आत्माएं, यहां तक विवेकानंद के जीवन में भी दिखाते हैं, जब जून मास चल रहा था उसके पहले 15 दिन से ही वो जैसे कि वो उसने बहुत बड़ा कैलेंडर निकाल के बैठ गया और ढूंढ रहा है जैसे कौन सी तारीख में जाऊं। जैसे उसको लगा मेरा कार्य पूरा हुआ, कौन सी एज कितनी है? 38। जीवन का कार्य चालू किया 28 साल की उम्र में, 10 साल में कार्य पूरा, मठ सारे भाषण, जो इतना सारा साहित्य है वो सारा भाषण देकर, सारे कार्य कर दूसरों को जिम्मेवारी सौंप कर, सब कुछ करके 38 साल की उम्र में जैसे ढूंढ के बैठ रहा है कि अब जाऊं कौन सी तारीख को, और बैठा एक दिन और आंखों से जैसे कि खून आ गया और समाधिस्थ अवस्था में शरीर छोड़ दिया इतनी शांति से। तो सभी इस पर एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है, किर्लियन फोटोग्राफी होता है, किर्लियन फोटोग्राफी में जो किर्लियन है उसने बहुत सारे संशोधन किए और उसने देखा कि मृत्यु से पहले 6 मास के पहले जैसे ऊर्जा के छल्ले जिसको कहते हैं रेडिएशन जो कि शरीर से निकलना चालू हो जाते हैं 6 मास पहले, और मृत्यु के 3 दिन तक भी वो निकलते रहते हैं। एक व्यक्ति पर उसने और एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक व्यक्ति का किर्लियन फोटोग्राफी किया और उसमें देखा कि उसके एक हाथ से निकल रहे है वो ऊर्जा, दूसरे हाथ से वो रेडिएशन नहीं निकल रहे। तो उसको आश्चर्य है ऐसा क्यों, और फिर देखा कि 6 मास में उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ और वो हाथ कट गया। तो मृत्यु से पहले जैसे शरीर को भी ये पता चल जाता है, शरीर भी कुछ ऐसे क्या कहते हैं उसको संकेत देता है कि अभी ये आत्मा यहाँ से निकलने वाली है। अगर ये सिद्धांत सत्य है तो फिर दुर्घटना का कोई महत्व नहीं है, ये बहुत बड़े प्रश्न उठे हैं। दुर्घटना तो नहीं परंतु घटना होने वाली है ये पता ही चल जाता है आत्मा को। शरीर आत्मा शरीर छोड़ने से पहले शरीर में भी बहुत सारी चीजें होने लगती है, चाहे वो कोई जवान व्यक्ति है उसका दुर्घटना से मृत्यु होने वाली है, पर शरीर को आत्मा को जैसे पहले ही पता चल जाता है कि शरीर से निकलने वाली है। तो ये किर्लियन फोटोग्राफी है, इस पर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। अभी एक नया कैमरा एक निकला है बायोमास, अभी का जो लाइफ पॉजिटिव मैक्सिन है उसमें आया है, वो किसी एक साइंटिस्ट ने बनाया है, उससे बहुत सारे शरीर के वाइब्रेशन वेव्स और वेवलेंथ सब कुछ पता चलता है। हाँ परछाई, ये परछाई वाला ही किर्लियन फोटोग्राफी इसको कहते हैं, जिसमें फोटो लिए जाते हैं। एक फंक्शनल एमआरआई भी होता है जिसमें ब्रेन में खुशी है, खुशी में आप है तो ब्रेन का फोटो लोगे तो उसमें कुछ और दिखेगा, दुख में है तो उसमें फोटो कुछ और दिखेगा। तो वैसे ही किर्लियन फोटोग्राफी है जिससे ये पता चल जाता है। और ये भी देखा गया कि 3 दिन तक, मतलब मृत्यु नहीं होती है जैसे, वो 3 दिन तक भी निकलते रहते हैं जो तीसरा मनाते हैं मृत्यु के बाद, कि 3 दिन तक भी वो ऊर्जा निकलती रहती है 6 मास पहले से और 3 दिन तक मृत्यु के। तो जैसे आत्मा को पहले ही पता चल जाता है। तो बाबा बोले बाकी थोड़े समय का है, अभी जल्दी ही अंत होने, और आदि से बाबा उस दिन गंभीरता से मुस्कुरा रहा था, जो लगता था कि कोई गुह्य रहस्य छिपा हुआ है। साथ में फिर बीच बीच में यही कहता था कि बेटी सूक्ष्म रतन में चलेगी, वहां चल खेलेगी बहलेगी। इन सब चरित्रों से पक्का महसूस हो रहा था कि बाबा अपने पास मुझे खींच रहा है। साथ में शरीर की कमजोरी बढ़ती हुई देख, शरीर भी कमजोर हो रहा था और भी पक्का होता जा रहा था। आखिरी दिन दिक्कत हुई, उसमें भी महसूस हो रहा था कि जैसे श्वास खींच रहे हैं। 2 घंटे पहले मेरी शारीरिक शक्ति कम होने लगी थी। कितने बजे शरीर छोड़ा वो नहीं पता ना, कितना, दोपहर को कि सुबह, कहीं पढ़ा नहीं मैंने, दोपहर को। और पक्का समझ में आ गया कि, लेकिन मैं बोलू यह संकल्प नहीं था। 2 घंटा पहले शारीरिक शक्ति कम होने लगी और पक्का समझ में आ गया था कि, लेकिन मैं बोलू यह संकल्प नहीं था। आखिर कुछ सेकंड में ऐसी अवस्था हो गई जैसे कि शरीर में हूं लेकिन देह से न्यारापन का, साक्षीपन का और अशरीर कर्मातीत अवस्था का अनुभव हो रहा था। यह संकल्प ही बाबा ने मर्ज करा दिया कि मैं जा रही हूं और क्या कर रहे थे, और क्या कर रहे थे। इस सुनने से भी मैं परे थी, अपने सामने बाबा का पारदर्शी रूप देखा जरूर लेकिन उस समय भी साकार वतन की, साकारी शरीर की भासना नहीं आती थी। उसके बाद फिर हमने पूछा, मम्मा शमशान की सीन बाबा ने आपको दिखाई? मम्मा बोली हाँ, बाबा ने सारी सीन ऐसे दिखाई जो अपने ही शरीर को साक्षी हो देख रही थी, शमशान की सीन। साथ में आप बच्चों के दृश्य को भी देख रही थी कि क्या क्या करते हैं, कैसे कैसी सबकी स्थिति है। तो ये था 4th दिन, और 5वां, 6वां, 7वां और भी 1-2 संदेश है जो कि कल पढ़ेंगे। अच्छा।